एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे विल स्मिथ की आत्मकथा विल के बारे में। और ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है इसमें।
जी बिल्कुल,
हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक ने अपने अंदर के डर, असुरक्षा और बचपन के जो घाव थे, उनसे जूझते हुए सफलता पाई।
हाँ, और हमारे पास जो नोट्स हैं वो भी यही दिखाते हैं कि ये बाहरी चमक और अंदरूनी संघर्ष के बीच की, मतलब एक जबरदस्त कश्मकश की कहानी है।
विल स्मिथ, ग्रैमी विजेता रैपर, फ्रेश प्रिंस के प्यारे स्टार और हॉलीवुड के सबसे सफल एक्टर्स में से एक।
बिल्कुल, पर इस किताब में वो जिस ईमानदारी से पेश आते हैं ना, अपने डर, अपनी गलतियों, अपने परिवार के संघर्षों को लेकर, वो सच में चौंकाता है।
हाँ, मतलब काफी खुलकर लिखा है।
बहुत ज्यादा। और आज के समय में ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस पर्दे को हटाती है जो अक्सर शोहरत और कामयाबी के पीछे होता है। ये सवाल उठाती है कि क्या बाहरी सफलता से अंदरूनी शांति मिली जाती है।
सही बात है। और किताब का एक बड़ा सवाल भी यही लगता है कि क्या हमारी सबसे बड़ी कामयाबियां असल में हमारे सबसे गहरे डर पर
जीत पाने की कोशिश का नतीजा होती है।
हाँ,
वही,
ये सिर्फ नाम या पैसे की बात नहीं है, बल्कि अपने दर्द को किसी मकसद में और डर को आगे बढ़ने की ताकत में बदलने की कहानी है।
या इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भर की शोहरत भी बचपन के उन सदमों को, उन घावों को नहीं भर पाती जो बहुत गहरे बैठे हों।
अच्छा,
स्मिथ खुद ये मानते हैं कि उनका पूरा पब्लिक परसोना, वो मजाक या हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने वाला विल स्मिथ,
हाँ, जो हम सब जानते हैं,
वो असल में एक कवच था, एक ढाल थी जो उन्होंने अपने बचपन के डर से बचने के लिए बनाई थी। वो जो पिता की हिंसा देखी, उसके सामने जो बेबसी महसूस हुई, और फिर वो कायर होने की शर्मिंदगी, उससे बचने के लिए।
तो चलिए कहानी की शुरुआत फिर वहीं से करते हैं जहां ये डर पैदा हुआ। फिलाडेल्फिया में विल का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार था,
जी
और उनके पिता विलार्ड कैरल स्मिथ सीनियर, जिन्हें वो डैडियो कहते थे, वो एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर थे। मतलब ताकत भी थे पर अस्थिर भी।
बिल्कुल, अनुशासन सिखाने वाले पिता थे पर साथ ही बहुत गुस्सैल और हिंसक भी थे। उनमें ये दोहरापन था। एक तरफ प्रेरणा, मेहनत का प्रतीक, लेकिन दूसरी तरफ उनका गुस्सा, उफ, और हिंसा परिवार पर बहुत भारी पड़ती थी। विल ने किताब में उस घटना का जिक्र किया है जब वो सिर्फ 9 साल के थे।
हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में।
न कर पाने का एहसास था, वो उनके अंदर कायर होने का डर बनकर बैठ गया।
9 साल की उम्र में ये देखना
तो बहुत बड़ा सदमा था, और ये एक ऐसा बोझ बन गया जिसे वो सालों तक ढोते रहे, और शायद अनजाने में इसी ने उनकी जिंदगी की दिशा भी तय कर दी।
तो फिर इसी डर से बचने का एक तरीका उन्होंने निकाला, लोगों को हंसाना, उनका मनोरंजन करना।
हाँ, एक तरह का मुखौटा पहन लिया।
हाँ,
एक डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं। और यहीं पर उनके पिता से मिला एक और सबक काम आया, वो दीवार बनाने वाला किस्सा।
अच्छा, वो क्या था?
पिता ने उन्हें और उनके भाई को एक टूटी दीवार दोबारा बनाने का काम सौंपा था। काम बहुत बड़ा लग रहा था, तो पिता ने कहा, तुम पूरी दीवार बनाने के बारे में मत सोचो, तुम्हारा काम बस एक ईंट लेना है और उसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ सही जगह पर रखना है।
ओह, एक बार में एक ईंट।
हाँ, ब्रिक बाय ब्रिक। विल ने इसे सिर्फ काम करने का मंत्र नहीं बनाया, बल्कि शायद अपने डर और असुरक्षाओं से निपटने का तरीका भी बना लिया।
मतलब कैसे?
हर छोटी सफलता, हर मजाक जो हिट हुआ, हर गाना, हर फिल्म, वो सब जैसे एक एक ईंट थी उस भावनात्मक दीवार में जो असली डरे हुए विल को दुनिया से छुपा रही थी।
अच्छा, ये तो गहरा नजरिया है।
हाँ, तो डर से बचने का रास्ता मनोरंजन में मिला। डीजे जैजी जेफ के साथ रैपर के तौर पे शुरुआत में तो जबरदस्त सफलता मिली, ग्रामी अवार्ड भी जीता।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा हिट था।
लेकिन फिर पैसों के मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई, टैक्स की बहुत बड़ी मुसीबतें आ गईं, वो लगभग गंगाल हो गए थे।
सच में?
हाँ, ये एक कड़वा सबक था कि शोहरत पाना एक बात है और उसे संभालना बिल्कुल दूसरी।
और फिर कहते हैं ना, किस्मत ने साथ दिया, द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर शो आया।
बिल्कुल, वो शो सिर्फ उनके करियर को बचाने वाला नहीं था, बल्कि वो एक तरह की प्रयोगशाला बन गया जहां उन्होंने अपने विल स्मिथ वाले पर्सोना को और तराशा।
हाँ, कैसे कैमरे के सामने दिखना है, लोगों को कैसे अपनी तरफ खींचना है।
बिल्कुल, और यहीं से हॉलीवुड का रास्ता खुला। पर ये कोई तुक्का नहीं था,
स्मिथ ने बाकायदा मतलब पूरी रिसर्च की, बॉक्स ऑफिस के पैटर्न को स्टडी किया।
अच्छा, ये तो मैंने नहीं सुना था।
हाँ, उन्होंने समझा कि दुनिया भर के दर्शकों को क्या पसंद आता है। हीरो वाली भूमिकाएं, स्पेशल इफेक्ट्स, थोड़ी कॉमेडी। उन्होंने इंडिपेंडेंस डे, मैन इन ब्लैक जैसी फिल्में चुनी जो ग्लोबल हिट बन सके।
सोची समझी रणनीति थी।
बिल्कुल, यहां तक कि उन्होंने बिग विली वीकेंड की स्ट्रेटजी बनाई, मतलब अपनी बड़ी फिल्में अमेरिका के जुलाई 4 वाले वीकेंड पर रिलीज करना ताकि दर्शक टूट पड़े। वो सफलता का एक फॉर्मूला बना रहे थे
और इस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा था उनका पब्लिक इमेज। हमेशा मजेदार, हमेशा हीरो, कभी ना हारने वाला विल स्मिथ। उन्होंने जेरा पिंकेट से शादी की, एक परफेक्ट दिखने वाला परिवार बनाया। बाहर से तो सब सेट था।
हाँ, बाहर से सब हासिल कर लिया था, लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से आता है। जब बाहर सब परफेक्ट दिख रहा था, तभी अंदर दरारें पड़ने लगी।
परिवार में?
हाँ, परिवार में, जिसे वो खुद बगावत कहते हैं, वो शुरू हुई। उनकी बेटी विलो, जिसने विप माय हेयर गाने से जबरदस्त शोहरत पाई थी छोटी सी उम्र में।
हाँ, वो गाना तो बहुत चला था।
अचानक वो इस सबसे पीछे हट गई, यहाँ तक कि विरोध में अपना सिर मुंडवा लिया। फिर बेटे जेडन के साथ उनकी बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म थी आफ्टर अर्थ।
हाँ, वो तो फ्लॉप हो गई थी बुरी तरह।
बहुत बुरी तरह, और उसकी जो आलोचना हुई उसने विल को हिला कर रख दिया। और फिर जेडन ने 15 साल की उम्र में कहा कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता है।
ओह, ये सब एक साथ?
हाँ, ये सब जैसे एक वेक अप कॉल था। विल को एहसास हुआ कि उनका वो कंट्रोल करने वाला तरीका, हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद, वो उनके अपनों को ही उनसे दूर कर रही थी। उनकी विरासत अब सिर्फ फिल्मों की सफलता नहीं रही, बल्कि अपनी कमजोरियों को समझने और असलियत को अपनाने की मुश्किल राह पर चल पड़ी।
ये बदल रहा था। शुरुआत तो डर से हुई थी, ये हमने देखा।
जी,
वो कायर न कहलाने का डर, असफल होने का डर, शायद प्यार न मिलने का डर भी। लेकिन क्या ये डर सिर्फ नेगेटिव था, या इसी डर ने उन्हें इतनी मेहनत करने के लिए भी उकसाया?
ये बहुत दिलचस्प सवाल है। डर ने उन्हें निश्चित रूप से प्रेरित तो किया, लेकिन शायद वो प्रेरणा एक बोझ जैसी थी। मतलब वो डर से भाग रहे थे, डर को समझ नहीं रहे थे। धीरे धीरे उनका दर्शन बदला।
कैसे?
उन्होंने ये समझना शुरू किया कि डर असल में भविष्य को लेकर हमारे अपने बनाए हुए विचारों में है। जैसा उन्होंने कहा भी, फियर इज नॉट रियल, डेंजर इज रियल। खतरा असली हो सकता है, पर डर हमारी कल्पना है।
ये बात तो सोचने वाली है।
और उन्होंने टैलेंट से ज्यादा स्किल और लगातार मेहनत पर जोर दिया, वही ब्रिक बाय ब्रिक वाली सोच। उनका मानना था कि स्किल घंटों की प्रैक्टिस से बनती है, जन्मजात प्रतिभा हो ना हो।
हाँ, वो दीवार वाली बात।
और उन्होंने ये भी महसूस किया होगा कि उनका बनाया हुआ विल स्मिथ पर्सोना और उनका असली रूप, इनके बीच तनाव है।
बिल्कुल, जिस किरदार ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, वही शायद उन्हें अकेला बना रहा था, उनके रिश्तों को खोखला कर रहा था। ये एक बड़ा विरोधाभास था।
तो फिर बदलाव कैसे आया?
धीरे धीरे वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा से हटकर दूसरों की सेवा, मतलब सर्विस के बारे में सोचने लगे। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने कंट्रोल छोड़ने की जरूरत महसूस की, समर्पण यानी सरेंडर करने की कला सीखने की जरूरत।
ये तो उनके जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, जो हमेशा कंट्रोल चाहता था।
हाँ, शायद सबसे मुश्किल सबक। उन्होंने रिश्तों को आईने की तरह देखना शुरू किया कि हमारे करीबी लोग ही हमारी कमियों को सबसे साफ दिखाते हैं और हमें बेहतर बनने का मौका देते हैं। वो भौतिक सफलता और आध्यात्मिक सुकून के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करने लगे। किताब में ऐसे कई मोड़ हैं जब उनकी जिंदगी बदली। अगर 3 सबसे अहम टर्निंग पॉइंट्स की बात करें, तो पहला तो शायद वही बचपन की घटना होगी, पिता वाली।
हाँ बिल्कुल, 9 साल की उम्र में पिता का माँ पर हमला देखना और खुद को बेबस पाना, उस घटना ने उनके अंदर जो कायर होने का डर और शर्मिंदगी पैदा की, उसने उनकी पूरी जिंदगी की महत्वाकांक्षाओं को ईंधन दिया, भले वो अनजाने में हुआ हो। हर उपलब्धि शायद उस एक पल की बेबसी को मिटाने की एक कोशिश थी।
दूसरा बड़ा मोड़ वो शायद तब आया जब सफलता के शिखर पर होते हुए भी उनका परिवार बिखर रहा था।
हाँ बिल्कुल, विलो का विद्रोह, आफ्टर अर्थ की जबरदस्त नाकामी और उसकी तीखी आलोचना, और फिर जीडन का अलग होने का फैसला, ये सब एक साथ हुआ। इसने विल स्मिथ के बनाए हुए परफेक्ट वर्ल्ड के भ्रम को तोड़ दिया।
ताश के पत्तों की तरह ढह गया वो।
सफलता और कंट्रोल से वो अपने परिवार की खुशी नहीं खरीद सकते। इस झटके ने उन्हें आत्मविश्लेषण के उस गहरे सफर पर जाने के लिए मजबूर किया, जिसका जिक्र उन्होंने किताब में खुलकर किया है। ये उनके लिए आईना देखने जैसा था, और जो दिखा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया।
और तीसरा सबसे अलग, सबसे अनोखा मोड़ था पेरू में उनका आयावास्का रिट्रीट।
हाँ, वो मध्य जीवन संकट का दौर था उनका, और आयावास्का वो एक पारंपरिक साइकेडेलिक अनुभव है जिसका उपयोग आत्म अन्वेषण और उपचार के लिए किया जाता है।
सुना है इसके बारे में, काफी इंटेंस होता है।
बहुत। इसके जरिए उन्होंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया। एक विजन में उन्होंने उस डर को मदर कहा, लेकिन इस बार उन्होंने लड़ने की कोशिश नहीं की जैसा वो हमेशा करते थे।
तो क्या किया उन्होंने?
उन्होंने समर्पण किया, सरेंडर। डर को स्वीकार किया, उसे समझने की कोशिश की, ना कि उसे दबाने या जीतने की। और इस समर्पण से, उनका कहना है, उन्हें एक ऐसी शांति मिली जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
वाह!
ये वो पल था जब उन्होंने कंट्रोल छोड़ने और अपनी असलियत को अपनी कमजोरियों के साथ अपनाने की शुरुआत की, जहां विल स्मिथ का मुखौटा हटने लगा और असली विल धीरे धीरे सामने आने लगा।
विल स्मिथ की कहानी है तो बहुत असाधारण, पर इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हम सब जुड़ सकते हैं ना?
बिल्कुल।
जैसे वो परफेक्ट दिखने का दबाव, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी ज्यादा है। या फिर सफलता पाने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करना, वो जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं।
हाँ, ये लगना कि आप इसके लायक नहीं हैं और कभी भी आपका भेद खुल जाएगा, ये बहुत कॉमन है।
और अपनी महत्वाकांक्षा और निजी जिंदगी, सेहत, रिश्तों के बीच वो बैलेंस बनाने का संघर्ष।
बिल्कुल। कितने ही लोग करियर में इतने खो जाते हैं कि बाकी सब पीछे छूट जाता है। विल की कहानी ये भी दिखाती है कि असफलताएं कितनी जरूरी हो सकती हैं। आफ्टर अर्थ की नाकामी उनके लिए तबाही जैसी थी, पर उसी ने उन्हें बदलने पर मजबूर किया।
हाँ, और बचपन के घावों से उभरना कितना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं, ये भी दिखता है।
सही। और रिश्तों में ईमानदारी और खुलकर अपनी कमजोरियां जाहिर करने का मतलब वल्नरेबिलिटी का महत्व भी साफ है, खासकर जेडा के साथ उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव में। और ये भी कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं होता।
और एक और बात जो मुझे लगी,
हाँ,
वो ये कि कैसे परिवार के पैटर्न, जैसे उनके पिता का गुस्सा और कंट्रोल करने का तरीका, अनजाने में अगली पीढ़ी में आ जाते हैं।
हाँ, ये बहुत अहम बात है। उन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आत्म जागरूकता और मेहनत लगती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कामयाब लोग भी उन्हीं डर और असुरक्षाओं से जूझते हैं जिनसे हम सब जूझते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी लड़ाई बड़े पर्दे पर या सुर्खियों में होती है।
तो इस पूरी बातचीत से अगर हमें तीन खास बातें, तीन टेक अवेज निकालने हों, तो वो क्या होंगी? पहली, एक भावनात्मक सबक।
मेरे हिसाब से सबसे बड़ा भावनात्मक सबक यह है कि असली ताकत हमेशा जीतने या कभी न डरने में नहीं है। असली ताकत तो अपनी कमजोरियों, अपने गहरे डरों का हिम्मत से सामना करने में है, खासकर जब वो डर बचपन के किसी घाव से जुड़े हों, जैसे विल का अपने पिता और उस घटना से जुड़ा डर था। उसे मानना और उसका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है, उससे भागना नहीं।
सही कहा। और एक बौद्धिक स्तर पर क्या सीख मिलती है?
बौद्धिक स्तर पर देखें तो एक अहम बात ये उभरती है कि बाहरी पहचान और मान्यता, चाहे वो शोहरत हो, अवार्ड्स हो या परफेक्ट होने का दिखावा, इसकी लगातार तलाश अक्सर अंदर की कमी या असुरक्षा से बचने का एक तरीका होती है। यह आपको कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करा सकती है, पर सच्ची और टिकाऊ शांति नहीं दे सकती।
वो तो अंदर से ही आएगी।
बिल्कुल। वो शांति तो बाहरी मुखौटे हटाकर अपनी असलियत को स्वीकार करने से ही मिलती है। विल स्मिथ का किरदार बनाना शायद आसान था, असली विल बनना कहीं ज्यादा मुश्किल और लंबा सफर था।
और आखिर में एक ऐसा सबक जो हम सब अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, एक यूनिवर्सल इनसाइट।
हाँ, वो दीवार वाले फलसफे से जुड़ा है। बड़े लक्ष्य पाने के लिए लगातार ध्यान लगाकर रोज मेहनत करना, ब्रिक बाय ब्रिक, बहुत जरूरी है। अनुशासन चाहिए, लेकिन इस अनुशासन के साथ साथ आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है, वरना हम अनजाने में ऐसी भावनात्मक दीवारें खड़ी कर लेते हैं जो हमें दूसरों से और खुद से ही दूर कर देती हैं। सफलता जरूरी है, पर यह सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि किस कीमत पर। विल की कहानी हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल सही कहा। इसी संतुलन को साधना शायद जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।